छठा भाग प्रणय भावना। पॉइंट नंबर वन, प्रारंभिक कविताओं में कवि का प्रकृति के प्रति विशेष झुकाव होने के कारण प्रेम भावना का अभाव दिखता है। उसका आभास यत्र तत्र अवश्य मिलता है। उच्छ्वास शीर्षक कविता में कवि ने बालिका की सहज मधुरता का चित्र खींचा है। इस बालिका में कवि की भावी प्रेम भावना की संभावना की जा सकती है। आंसू की बालिका शीर्षक कविता में प्रेयसी के पवित्र साहचर्य जनित प्रेम से उत्पन्न प्रभाव का वर्णन मिलता है। यहाँ कवि ने प्रेयसी के साहचर्य को गंगा स्नान के समान पावन तथा उसकी वाणी को त्रिवेणी की लहरों का गीत स्वीकार किया है। कवि की प्रिया काल्पनिक है और उसके रूप तथा संग का प्रभाव भी वस्तुगत न होकर आत्मगत है। काल्पनिक होने के कारण वह प्रिया में कुछ अधिक ही रूप और माधुर्य की कल्पना करता है। कवि काल्पनिक प्रिया को अपने जीवन का एकमात्र अवलंब मानता है। त्रिभुवन की भी तो श्री भर सकती नहीं प्रेयसी के शून्य पावन स्थान को। आधुनिक कवि, दूसरा भाग, पृष्ठ नंबर 12 से। पॉइंट नंबर 2, उस काल्पनिक प्रेयसी से जो न कभी कवि को मिली है और भविष्य में भी जिसके न मिलने की संभावना है, कवि स्वभावतया वियुक्त है। कवि समझ नहीं पाता कि यह विरह है अथवा वरदान, क्योंकि वियोगी व्यक्ति ही मिलन के अलौकिक आनंद का अनुभव कर सकता है। कवि के अनुसार कविता अर्थात जीवन की उच्चतम उपलब्धि के लिए मिलन के पश्चात विरह कष्ट आवश्यक है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगा कविता अनजान। आधुनिक कवि, भाग 2, पृष्ठ नंबर 15 से। कवि की प्रणय भावना अत्यधिक सूक्ष्म और गंभीर है। उसके अनुसार प्रेम की दृष्टि स्थूल न होकर नितांत सूक्ष्म है। वह आँख से नहीं अपितु आँख की कोर से देखता है और प्रेमास्पद के दूर रहने पर उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 3, गुंजन में कवि ने भावी पत्नी के प्रति शीर्षक कविता में पत्नी के प्रथम मिलन का काल्पनिक चित्र खींचा है। वह कल्पना करता है कि उसकी भावी पत्नी प्रथम मिलन के बाह्य रूप में लज्जावनत और भीतर से आनंद पुलकित रहेगी। वह काल्पनिक मधुवार का संगत और आनंदोल्छल वर्णन करते हुए समागम की पंडित प्राणावेगों की परिश्रांति में दिखाता है। उसकी भावी पत्नी प्राणों की प्राण है। उसके कथन के अनुसार प्रेमी और प्रेमास्पद के प्रथम मिलन का प्रभाव सृष्टिव्यापी होगा। उस समय दोनों के मध्य प्रेम का ऐसा गंभीर आदान प्रदान होगा कि चलाचल अपनी स्वाभाविक क्रिया भूलकर विपरीत धर्मी हो जाएंगे। कवि के शब्दों में उनका गूढ़ प्रणयाख्यान इस प्रकार है। जबकि रुक जाएगा अनजान सांस सा नभ उर्मे पवमान, समय निश्चल दिस पलक समान, अवनि पर झुक जाएगा प्राण, गुंजन से। इस प्रकार कवि के अनुसार उसकी भावी पत्नी समस्त मधुरिमा और सुषमा का कोष है। स्वाद स्पर्श रहित अर्थात दिव्य है तथा प्रकृति के संपूर्ण हास विलास और सुख समृद्धि का पूंजीभूत है। पॉइंट नंबर 4, पंत जी के काव्य जीवन के यौवन काल में प्रणय भावना काफी अरसे तक निष्प्राण रहती है। कवि के काव्य जगत से प्रणय जैसे ओझल हो जाता है, किंतु जीवन के अंतिम दिनों में कवि पुनः प्रेम से जीवन रस आकृष्ट करता दिखता है। यहाँ उसका प्रेम काल्पनिक तो है ही, अंतर्मुखी और आध्यात्मिक भी हो गया है। अब उसके प्रेम का धरातल पहले की तरह भावात्मक न होकर वैचारिक है। प्रेम का प्रवाह उद्वेलित न होकर स्निग्ध शांत और मंथर है। कवि देह रति के ऊपर जाकर आध्यात्मिक रति की कामना करता है। काम की तुलना में उसे प्रीति अधिक स्थिर और भावमय दिखती है। निश्चय ही यह प्रेम भावना का उदात्तीकृत रूप है। प्रेम की इस दशा में कवि सर्वत्र और पूर्ण रूप में अपनी प्रेयसी के दर्शन करता है। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।